أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين۔ توحید کے موضوع پر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی 6 تقاریر میں سے پہلی تقریر ہم نے تمام کر لی، آج دوسری تقریر کا انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں۔ اگر اس تقریر کا موضوع آپ کو یاد ہو تو وہ یہ تھا، ہم نے عرض کیا تھا اسلامی نظریاتی نظام، جس کو انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے، اسلامی نظریاتی نظام میں توحید، یعنی توحید کا کیا مقام ہے اور کیا تقاضے ہیں اسلامک آئیڈیالوجی میں توحید۔ اس تقریر کا آغاز آیت اللہ سید علی خامنائی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 سے کیا ہے۔ پہلے ہم اس آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم، اللہ کے نام سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ اس جیسے قرار دے لیتے، یعنی کچھ اور چیزوں کو، کچھ اور ہستیوں کو اللہ کے برابر، اللہ کے مساوی قرار دے دیتے اور کیا کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، پھر ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، توجہ فرمائیے، یہاں پر مشرکوں کی صفت بیان کر کے جو اور چیزوں کو یا اور شخصیات کو اللہ کے مساوی قرار دے دیتے ہیں، ان کی صفت بیان کر کے، اور وہ کیا صفت ہے کہ جس طرح اللہ سے محبت ہوتی اس طرح ان سے محبت کرتے، مشرکین کی صفت بیان کر کے، ان کا عمل بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی صفت بیان فرما رہا۔ والذین آمنوا، جبکہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اشد حبا للہ، وہ محبت کے اعتبار سے، حب محبت کے اعتبار سے انہیں سب سے زیادہ شدید محبت اللہ کے ساتھ ہوتی۔ کیا مطلب، یعنی باقی تمام ان کی محبتیں اللہ کی محبت کے سائے میں ہوتی، لیکن سب سے زیادہ محبت تمام کائنات سے، تمام ان چیزوں سے، ان رشتوں سے، ہر چیز سے، جن جن سے ان کو محبت ہے، ان سب سے بڑھ کر مومن کی نشانی جو قرآن کریم، یعنی خود اللہ بیان فرما رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ایمان انسان کے اندر کیا اثر رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں جو شخص حقیقی مومن ہو تو اس کا ایمان اس کو تمام کائنات سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کروا دیتا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں، کیا دیکھ لیں، اس چیز کو دیکھ لیں कि जब वो अजाब को देखेंगे और तब वो बात जो उन्हें समझ आनी है आज देखें। और वो क्या नजर आएगा उनको जब अजाब को देखेंगे, अन्नल कुव्वत लिल्लाह जमीअन, ये के कुव्वत ताकत सारी की सारी सिर्फ अल्लाह के लिए। जिनको वो अल्लाह के बराबर ले आए थे क़यामत के दिन देखेंगे कि उनके पास तो अल्लाह के मद्दे मुकाबिल कोई जर्रा बराबर भी कुव्वत नहीं। और देखेंगे कि वह अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और ये कि अल्लाह बड़ा शदीद अज़ाब देने वाला है। लेकिन उस वक्त इस्लाह करने की मुद्दत तमाम हो चुकी होगी और वो इसी शिर्क की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होंगे। और जिनको अल्लाह जैसी मोहब्बत किया करते थे देखेंगे कि ताकत तो सारी की सारी, फैसला करने की कुव्वत तो सारी की सारी अल्लाह के पास। तो ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 165 थी, जो इस तकरीर के शुरू में आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खामेनाई ने बयान की। और अब हम उनकी जो तकरीर है उसको आपके सामने बयान करते हैं। फरमाते हैं, इलाही इंसान कहता है कि जो कुछ हम देखते और मुशाहिदा करते हैं उसके मावरा यानी उसके पीछे, हमें जाहिर चीज नजर आ रही होती है, जो कुछ हम देख रहे होते हैं उसके पीछे एक बरतर और अजीम तर हकीकत मौजूद है, और अगर वो हकीकत न होती तो ये चीजें वजूद में न आती। यानी वो चीजें जिनको हमारी नजरें देख रही हैं, ये एक इलाही इंसान कहता है कि जिन चीजों पर हमारी नजरें पड़ रही हैं इनके पीछे एक बरतर एक अजीम तर कुव्वत है, ऐसी कुव्वत कि अगर वो ना होती तो ये चीजें भी वजूद में ना आती। ये इलाही इंसान की बात है। इसके मुकाबले में मादी इंसान, जो कि मादी इंसान किसे कहते हैं, मादा परस्त भी कहा जाता है, मादा गरा भी इन्हें कहा जाता है, अंग्रेजी जुबान में मेटेरियलिस्टिक, ये कौन लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं कि जो कहते हैं जो कुछ है वो ये मादा ही है, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ हम महसूस कर सकते हैं अपने हवास से, खमसा से, फाइव सेंसेस से, यानी जो हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं या जिसे हम सूंघ सकते हैं या जिसको चखा जा सकता है या जिसको लम्स किया जा सकता है, ये पांच हवास, फाइव सेंसेस। इसके अलावा और कुछ मौजूद नहीं है, मादा ही सब कुछ है। मादे के अलावा गैर मादी कोई चीज वजूद नहीं रखती। तवज्जो फरमाइए, मादी इंसान कहता है नहीं, यानी इलाही इंसान के बरक्स, मादी इंसान कहता है नहीं, जो कुछ हम देख रहे हैं उसके अलावा हम किसी चीज के मोतकिद और पाबंद नहीं हो सकते। लेबोरेटरियों और तजर्बा गाहों में हमने बहुत तलाश किया लेकिन जिस चीज का आप लोग कहते हैं हमें कोई असरात नहीं मिले। यानी तुम जो कहते हो अल्लाह है, हमें तो हमने बहुत ढूंढा, हमने लेबोरेटरीज में तजर्बे किए, बहुत ढूंढा, ये जो तुम कहते हो कि कोई अल्लाह है हमें कोई असरात उसके नहीं मिले। मादी और इलाही इंसान का इख्तलाफ हम इन किताबों और बहसों के लिए छोड़ देते हैं जो इसी मकसद के लिए मखसूस है, उन किताबों के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमारा हम जो बात कर रहे हैं ये बहस हमारा मौजू नहीं है, کہ ہم خدا کے وجود کے دلائل دیں. وہ اس کے لیے کتابیں بھی ہیں, تو ان کتابوں کے لیے اس بحث کو چھوڑتے ہیں کہ جس کا جی چاہے ان کا مطالعہ کریں. ابھی ہمارا موضوع کچھ اور ہے. فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے دور کا مادہ پرست, یہ آیت اللہ سید علی خامنہ ای فرما رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے زمانے کے مادہ پرست ہیں, میٹیریلسٹک لوگ ہیں, اور بریکٹس میں وضاحت کی ہے کہ تاریخ کے ڈیموکریٹ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. یہ ڈیموکریٹ ایک یونانی فلسفی تھا, زی مقراطیس بھی جس کے نام کا ایک تلفظ ہے. اس کا کہنا تھا کہ اشیاء, یعنی یہ تمام چیزیں جو ہمیں کائنات میں نظر آتی ہیں, یہ تمام اشیاء چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم ذروں سے بنی ہیں جنہیں ایٹم کہا جاتا ہے. وہ روح کا معتقد نہیں تھا زی مقراطیس یا ڈیموکریٹ. وہ کہتا تھا کہ روح نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی, اور اسے انسان کے مغز سے وابستہ سمجھتا تھا. یعنی یہ جس کو ہم زندگی کہتے ہیں, یہ جو ہم سوچتے ہیں, یہ انسان کے مغز کے برین کے اندر کے پروسیس ہیں. روح نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی کیونکہ وہ غیر مادی چیزوں کا منکر تھا. اس کا خیال تھا کہ واحد چیز جو وجود رکھتی ہے وہ ایٹم ہے, اور ایٹم سے مل کر بنا ہوا میٹر ہے, مادہ ہے. اسی لیے اسے, یعنی زی مقراطیس کو کیا کہا گیا, مادہ پرست, کہ یہ صرف مادے کو سب کچھ سمجھتا ہے, ماورائے مادہ کسی چیز کا معتقد نہیں. ایسا شخص کیا کرے گا, روح کا انکار کرے گا, مثلا فرشتوں کا انکار کرے گا, اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کا انکار کر دے گا. تو فرماتے ہیں کہ تاریخ کے ڈیموکریٹ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. زی مقراطیس یا کوئی اور مادہ پرست ملحد دانشور جو 10 صدیاں پہلے, 20 صدیاں پہلے یا 30 صدیاں پہلے زندگی گزار رہا تھا, اس سے ہماری کوئی بحث نہیں. اب اس بات کو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, توجہ سے سنیے. وہ مر گیا اور اس کی ہڈیاں بھی مٹی ہو چکی. یعنی ہم یہ جو بات شروع کی تھی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے دور کا مادہ پرست, یعنی ہم پچھلے جو 10 صدیاں 20 صدیاں 30 صدیاں پہلے زی مقراطیس جیسے مر گئے, دنیا سے چلے گئے, ان سے ہماری ابھی بات نہیں ہے. ہم آج اپنے دور کے مادہ پرست کی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ مادہ پرست لوگ, ان کا اصل میں موقف کیا ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. توجہ فرمائیے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے دور کا مادہ پرست اگر کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے, اگر سمجھتا ہے کہ اس کائنات کے ماورا کوئی اور حقیقت وجود نہیں رکھتی, یہ بار بار لفظ آئے گا, آتا ہے ماورا, یہ عربی کا لفظ ہے, دو لفظوں سے مل کے بنا ہے, ما اور ورا. ورا کہتے ہیں پیچھے, عربی زبان میں سامنے, مثلا انسان بیٹھا ہے, میرے سامنے جو کچھ ہے اس کے لیے کا کیا لفظ استعمال ہوگا, امام. امام جیسے امام لکھتے ہیں بالکل اسی طرح, امام یعنی فرنٹ, سامنے, اور ورا یعنی پیچھے, ما یعنی جو, ما ورا جو کچھ پیچھے, یہ اس کا لفظی معنی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اگر سمجھتا ہے, یعنی مادہ پرست اگر سمجھتا ہے کہ اس کائنات کے ماورا, ماورا کا اب یہاں کیا معنی ہے کہ جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کے پیچھے, اس کائنات کے ماورا کوئی اور حقیقت وجود نہیں رکھتی, یہ جب مادہ پرست یہ کہتا اور سمجھتا ہے, تو در حقیقت چونکہ وہ مکتب الہی یعنی دین, अब ये जड़ बता रहे हैं, तवज्जो फरमाइए, आयतुल्ला सैयद अली खामेनाई, मादा परस्तों की दीन से दूर भागने का असल सबब क्या है, क्यों वो बार बार जिद करते हैं अल्लाह नहीं है। हालांकि आगे बताएंगे, किसी के पास अल्लाह के ना होने की कोई दलील नहीं है और ना ही हो सकती, फिर क्यों जिद करते हैं कि अल्लाह नहीं है। अब जब आप ये बात सुनेंगे तो आप पर यह भी वाजे होगा कि आज भी हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल में दीन से दूरी के जो जरासीम पाए जाते हैं, दीन पर एतराजात, उनका सबब भी तकरीबन वही है कि जो एक मादा परस्त के अंदर सबब पाया जाता है। तवज्जो फरमाइए, हमारे दौर का मादा परस्त अगर कहता है कि खुदा नहीं है, अगर वो समझता है कि इस कायनात के मावरा कोई और हकीकत वजूद नहीं रखती, तो दर हकीकत चूंकि वो मकतब इलाही यानी दीन, चूंकि वो मकतब इलाही से फिक्री और रूही तौर पर मायूस हुआ है, उसने दुनिया में मौजूद जो दीन की हालत है उसकी सूरत हाल देखी है, तो उसको मायूसी हुई है कि ये दीन जो मुझे नजर आ रहा है ये इंसानियत के किस दर्द की दवा है। चूंकि वो मकतब इलाही से फिक्री और रूही तौर पर मायूस हुआ है इसलिए ऐसी बात करता है, इसलिए खुदा के इनकार पर इसरार करता हुआ नजर आता है, वरना उसके पास दलील कोई नहीं है अल्लाह के ना होने की। असल में जड़ कहीं और है। चूंकि उसका ख्याल है कि दुनिया की मौजूदा साख्त, ये जो आज दुनिया की, आज जो हमें मुआशरा नजर आ रहा है, दुनिया की मौजूदा साख्त इंसानों को मुनज्जम करना यानी इंसानों को मैनेज करना, मुआशरे को चलाना, इंसानों को बेहतरीन जिंदगी, अमन व अमान, अदल, ये सब फराहम करना, चूंकि उसका ख्याल है कि दुनिया की मौजूदा साख्त इंसानों को मुनज्जम करना यानी मैनेज करना, अदल का क्याम और बेजा इम्तियाजात को खत्म करना सिर्फ और सिर्फ मादी और मटेरियलिस्टिक सोच के जरिए ही मुमकिन है। उसने दीनदारों की जो हालत देखी है, दीन का परचम बुलंद करने वालों के मुआशरों की जो हालत देखी है, वो भाग गया इससे। वो देखता है ये लोग कहते हैं हम दीनदार हैं, लेकिन वो देखता है कि इस मुआशरे में जुल्म हो रहा है, वो देखता है कि इस मुआशरे में करप्शन है, वो देखता है कि इस मुआशरे में दीन के नाम पर बाज लोग दूसरों के हकूक पर डाका डाल रहे हैं, वो देखता है कि ये दीन का दावा करने वाले इंसानों के इन दर्दों का, इंसानियत के इन दर्दों का दरमान नहीं कर रहे बल्कि इजाफे का बायस बन रहे, तो वो इससे भाग जाता और इतना भागता है कि इसरार करने लगता है कि अल्लाह ही नहीं। क्यों कहता है? इसलिए कि अगर वाकया इतने इल्म रखने वाले अल्लाह की तरफ से कोई प्रोग्राम आया होता तो वो तो इंसानियत को कमाल तक पहुंचा देता। अगर ये दीन जो मुझे नजर आ रहा है आज दुनिया के मुआशरे में, अगर ये वाकया उस हर चीज का इल्म रखने वाले अल्लाह की तरफ से होता जिसे खालिक कहा जा रहा है, जिसे हर चीज का आलिम कहा जा रहा है, तो उसका प्रोग्राम तो जिस मुआशरे में भी होता वो मुआशरा तमाम दुनिया में सबसे आगे होता, अदल और इंसाफ में सबसे आगे होता, इंसानों की फलाह व बहबूद, उनकी जिंदगी की बुनियादी जरूरियात, मुसावात, इन सब में सबसे आगे होता। लेकिन जब वो देखता है कि ऐसा नहीं है, वो कहता है कि पहले वो कहता है कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं आया, और फिर कहां पहुंच जाता है, कहता है अल्लाह ही नहीं है, होता तो वो कुछ देता इंसानियत के लिए, जो मौजूद मुझे नजर आ रहा है वो तो अल्लाह की तरफ से आया हुआ नहीं हो सकता, और अगर अल्लाह है तो फिर उसका प्रोग्राम भी तो होना चाहिए था, अगर उसकी तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं है इसका मतलब है वो भी नहीं है, है ही नहीं अल्लाह। आज का मादा परस्त असल में जो दीनदारों की हालत, दीनी मुआशरों की हालत उसने देखी है, उससे मायूस है। और मैंने आज किया कि अगर आप इस बात पे गौर करें, आज का मुसलमान नौजवान भी कि जिसके अंदर इल्हाद के जरासीम नजर आते हैं, असल में जब देखता है दीनदारों की हालत को, मसलन इस्लामी मुआशरों की हालत को, तो बददिल हो जाता है। मैं इस्लामी मुआशरा कह रहा हूं, कोई भी दीन देखता है कि दीन, जिन लोगों ने दीन को छोड़ दिया वो आगे निकल गए, उनकी जिंदगियों का मेयार बहुत बेहतर हो गया, वहां ज्यादा अदल और इंसाफ है, और ये दीन का दावा करने वाले ये पीछे रह गए, पसमांदा रह गए। इनके मुआशरों में ज्यादा करप्शन, ज्यादा अखलाकी पस्ती, तो नतीजा क्या निकलेगा? ये है आज के मादा परस्त का असल प्रॉब्लम। तवज्जो फरमाइए, फरमाते हैं चूंकि उसका ख्याल है कि दुनिया की मौजूदा साख्त इंसानों को मुनज्जम करना, यानी इंसानों को मैनेज करना, अदल का क्याम और बेजा इम्तियाजात, बेजा इम्तियाजात यानी इसका हक नहीं बनता लेकिन ये ऊपर चढ़ के बैठा हुआ कुर्सी पर, और वो जब मेरिट पे पूरा उतरता है उसको मौका नहीं दिया जा रहा, और मुआशरा कौन सा है? कह रहे हैं जी दीनी मुआशरा। ये कैसा दीन है जो एक मेरिट पर पूरा उतरने वाले शख्स को हक नहीं दिला सकता, जो एक जालिम जिसने एक मजलूम का हक छीन लिया अपनी ताकत के बलबोते पर या अपने माल के बलबोते पर, इस मुआशरे का अदालती निजाम मजलूम को हक नहीं दिला सकता, ये कौन सा दीन है? ये दीन क्या क्या दे रहा है इंसानियत को, इन इंसानों को क्या दे रहा है? भाग जाएगा। चूंकि उसका ख्याल है कि दुनिया की मौजूदा साख्त इंसानों को मुनज्जम करना, अदल का क्याम और बेजा इम्तियाजात को खत्म करना सिर्फ और सिर्फ मादी मेटेरियलिस्टिक सोच के जरिए ही मुमकिन है, इस वजह से वो इलाहियों के मकतब से रू गर्दानी करता है। वो देखता है मसलन मगरिब में जहां पर कोई दीन को इंसानों की सोसाइटी से, हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, वहां ज्यादा तरक्की हो रही है, वहां ज्यादा जिंदगी आसान है, वहां ज्यादा सहूलियात बुनियादी मुयसर है लोगों को, कहता है वो बेहतर है, वो दुनिया को वो मादी फिक्र सही चला सकती है, ये जो दीन दीन कर रहे हैं ये नहीं चला सकते, अगर चला सकते होते तो दिखाई दे रहा होता। इस वजह से वो इलाहियों के यानी जो अल्लाह के कायल हैं उनके मकतब से रू गर्दानी करता है। अगर हमारे जमाने के पिछले 50-60 बरसों के अंदर के इन लोगों पर गौर किया जाए जो बाज इज्मों की तरफ मायल हो गए हैं, जैसे मेटेरियलिज्म, ये जो सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, जो बाज इज्मों की तरफ मायल हो गए हैं, अगर इन लोगों का एक मुताला किया जाए, इनकी जिंदगियों का क्यों उधर मायल हुए, क्या असबाब बने, अगर इसको स्टडी किया जाए, मुताला किया जाए असबाब का, उधर मायल होने के इनके असबाब का, तो हमें मालूम होगा कि बात वही है जिसकी तरफ हमने इशारा किया, यानी जो बात मैंने आपको बताई है, हम देखेंगे कि वही सबब है इन लोगों के दीन से बिदक कर इन मुख्तलिफ इज्म्स की तरफ मायल होने का। इस वजह से नहीं है कि उन्हें खुदा से कोई जिद है, क्यों जिद हो? इस वजह से नहीं है कि उन्हें खुदा से कोई जिद है, या इसलिए कि खुदा के वजूद पर कोई काबिल इत्मीनान दलील मौजूद नहीं है, यह भी सबब नहीं है। उन्होंने खुदा को मुस्तरद या कबूल नहीं किया है, ये तो जिद में बात करते। जब उन्हें अल्लाह का नाम लेकर डराया जाता है, धौंस से कहा जाता है कि तुम दीन से दूर जा रहे हो, अल्लाह तुम्हें अजाब देगा, ये कर देगा, जहन्नम में डालेगा, तो वो जिद में आके कहते हैं अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह को साबित करो। बुनियाद मौजूदा दीनी मुआशरों की हालत खराब हालत, उनकी दीन से मायूसी है, ये असल सबब। उन्होंने खुदा को मुस्तरद या कबूल नहीं किया है, उस तरफ से भी गालिबन कोई दलील मौजूद नहीं है, खुदा की नफी पर कोई दलील मौजूद ही नहीं है। कोई नहीं दावा कर सकता कि मेरे पास दलील मौजूद है कि अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है, इस कायनात का खालिक वजूद, कोई खालिक वजूद नहीं रखता, किसी के पास कोई दलील नहीं, ना अभी है और ना पहले कभी थी। आपका किसी अगर मसलन एथियस्ट से सामना हो, आप उससे कहें कि अल्लाह के ना होने की दलील दो, वो आपसे क्या कहेगा, तुम होने की दलील दो। ना होने की दलील किसी के पास नहीं, वो दलील क्या देंगे, अगर है तो दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, ना होने की दलील किसी के पास नहीं है, ना अभी है और ना पहले कभी थी। आपको एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं कहता हूं इस दलील की बिना पर खुदा नहीं है, एक शख्स भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, एक शख्स भी नहीं। दुनिया के तमाम मादा परस्तों में पहले दिन से लेकर आज तक एक शख्स ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं इस दलील की बुनियाद पर साबित करता हूं कि खुदा नहीं, एक भी नहीं मिलेगा। इस बारे में जो कोई भी कुछ कहता है तो वो ये है, क्या कहता है वो, यानी अगर आप उनकी दलीलों को मुख्तलिफ अंदाज में सुने तो लुब बेलुबाब खुलासा क्या है, वो ये कहता है कि मेरे लिए साबित नहीं हुआ है कि वो है, यानी अल्लाह है, मेरे लिए साबित नहीं है, लिहाजा मैं नहीं मानता, मुझे समझ में नहीं आया है, उसके होने के इस्तेदलाल को मैंने कबूल नहीं किया। यानी तुम जो अल्लाह के होने की दलीलें मुझे दे, इस्तेदलाल का माना होता है दलील लेकर आना। वो क्या कहते हैं कि तुम जो दलीलें ला रहे हो खुदा के वजूद की, मैं, मेरा जहन उसे कबूल नहीं कर रहा। लेकिन जैसा कि इशारा कर चुके कि जड़ कहीं और है, जड़ कहीं और है, वरना अगर आज तूल तारीख में मुसलमान हुक्मरानों ने अगर वो तहरीक जो रसूलुल्लाह ने कुरान करीम के जरिए शुरू की थी उसी रूह के साथ जारी रखते और आपस में इख्तलाफात और लड़ाइयों और सुस्तियों और दुनिया परस्तियों का शिकार ना होते, तो तारीख ने गवाही दी है कि एक ऐसी अरब जो एक इंतहाई हर एतबार से जहालत के हर एतबार से एक पस्त कौम थी, चंद ही सालों में दुनिया को हिला के रख दिया उन्होंने। कहां से आई थी वो ताकत, इसी दीन की ताकत थी। कैसे ये सब हुआ था, दीन की वजह से हुआ था। लेकिन जब उस दीन की रूह निकल गई और सिर्फ दीन का नाम रह गया, और कुछ लोगों ने यह बना लिया कि जो भी आजकल जैसे जो भी करप्शन करते रहो उसके बाद दीन के दो चार वजीफे करो या अमल कर लो तो वो गुनाह माफ हो जाते हैं, इसने तबाही मचा दी, इसने देखने वालों की नजरों में दीन को एक खौफनाक चीज बना दिया कि ये करप्ट लोग सारी करप्शन करके फिर कहते हम ये वाली इबादत कर लें तो हमारी माफ हो जाती। इससे भयानक चीज कोई तसव्वुर की जा सकती कि करप्शन भी जारी रखो और साथ साथ तुम्हारा दीन नाम की चीज तुम्हें हर चीज माफ करा रहा है, इससे बड़ी खयानत दीन के साथ और क्या हो, कि जो आया ही इंसान की इस्लाह के लिए था, आया ही इंसान के अंदर से जुर्म और गुनाह को खत्म करने के लिए था, आज उसमें ऐसी तहरीफ करके बयान किया जाता है कि लोग समझते हैं हम जितने भी गुनाह कर लें हमारा चूंकि फलान मसलक से फलान पार्टी से ताल्लुक है हमने तो आखिरत में यूं बच के गुजर जाना, हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। इस किस्म के तहरीफ शुदा नजरियात ने दीन को बदनाम किया, दीन के मुखालिफ कर दिया लोगों को। तवज्जो फरमाइए, इसके बाद ये आज के मादा परस्त की बात बयान करके फरमा रहे हैं आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खामेनाई, اور قرآن بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے. کیا کہتا ہے قرآن؟ انہم الا یظنون, یہ جو اللہ کے انکار کر رہے ہیں یہ اور کچھ نہیں کرتے, صرف گمان ہے ان کا, ان کے پاس کوئی یقینی دلیل نہیں, گمانوں کے پیچھے چلتے. اب دیکھیں کیوں اس گمان کی طرف مائل ہیں, اللہ کے وجود نہ رکھنے کے گمان کی طرف کیوں مائل ہوئے؟ سبب بتا دیا, دین سے, جب دین کے نتائج کو دیکھ رہے ہیں آج کے معاشرے میں, اس سے مایوس ہیں, اس سے بدک گئے. کہتے ہیں یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ انسانیت کے مسائل حل نہیں کر سکتا, کر سکتا ہوتا تو پھر مغرب کے لوگ ویزے لگوا کر اسلامی ممالک کے سفارت خانوں کے سامنے لائنیں لگا کر کھڑے ہوتے کہ ہم نے ان کے ملک میں جا کے رہنا ہے, اگر یہ معاشرے, اس دین نے ایسے معاشرے بنائے ہوتے, جبکہ برعکس یہاں پر لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, بلکہ منتیں مان رہے ہوتے ہیں دین سے کہ اگر ہمارا ویزا لگ جائے, مثلا ہمارے بچے کا ویزا لگ جائے کسی مغربی ملک میں جانے کا, ہم جناب عمرہ کریں گے, منت مان رہے ہوتے ہیں. دین بھی اس لیے رہ گیا کہ اپنا معاشرہ چھوڑ کے بھاگنا ہے, اور اس میں بھی دین, اس فرار سے بھی دین ہیلپ کرے ہمیں. آپ ذرا توجہ فرمائیے کس پستی میں ہم نے اپنے آپ کو لا کر کھڑا کر دیا. دین سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن نہ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, نہ دین کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں. انہم الا یظنون, یہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 24 کا ایک حصہ ہے. یہ لوگ صرف خیال اور گمان کرتے ہیں وگرنہ کسی دلیل کی بنیاد پر اللہ کا, آخرت کا, ماورائے مادہ کا انکار نہیں کر سکتے, دلیل کے تحت نہیں کر سکتے. آج کے درس کو یہاں پر تمام کرتے ہیں, انشاءاللہ اس موضوع کے بیان کو اگلے درس میں جاری رکھیں گے, خداوند عالم نے توفیق دی تو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.